السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سورہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سورہ یوسف. اس سورت کے بارے میں ہمارے ہاں شاید یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ کوئی لو سٹوری ہے، کوئی رومانس کی سورہ ہے. ایسا نہیں ہے. ان فیکٹ سورہ یوسف جو ہے یہ ایک بہت پاورفل سورہ ہے. پوری سورت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، سوائے شروع کی چند آیات کے اور آخر کی. اور یہ اس لیے بہت پاورفل سورہ ہے کہ اس میں وہ باتیں ہیں جو ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے وہ ٹراما سے گزرے، مگر اس کے باوجود وہ ٹراماٹائز نہیں ہوئے. انہوں نے زندگی میں ڈاؤن ٹائمز بھی دیکھے، اپ ٹائمز بھی دیکھے، مگر کیسے انہوں نے اپنے ڈاؤن ٹائمز کے ساتھ کوپ کیا، کس طرح سے وہ اس وقت رہے، اور کس طرح وہ اپنی زندگی کے سب سے ٹاپ، جو دنیاوی طور پہ ٹاپ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں رہے. تو یہ ایک ایسا قصہ ہے جو ہماری زندگیوں سے، ہر ایک کی زندگیوں سے بڑی ریلیونس رکھتا. اور خاص طور پر جو انسان کسی غم میں ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، حزن جس کو کہتے ہیں، گریف اس میں ہے، اس کے لیے اس قصے میں بہت کچھ ہے. بعض لوگ اسی لیے شاید کہہ دیتے ہیں غم کے وقت آپ سورہ یوسف پڑھیں، تو غم کے وقت پڑھنے کے لیے کوئی حدیث میں تو نہیں ہے، مگر واقعی اس میں ایسی باتیں ضرور ہیں کہ اگر آپ سمجھ کے پڑھیں نا تو دل کو تھام لینے والی ہیں. اور آپ ٹائمنگ بھی دیکھ لیں اس سورہ کی، کہ یہ سورت کب اتری. اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی غم میں تھے، جس کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال اس سے گزرے تھے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ غم کا سال اس کو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ خاص واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، محبوب شخصیت، آپ کی محبوبہ بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی. اور وہ آپ کی صرف بیوی نہیں تھی، آپ کی ساتھی تھی، آپ کے غم کی ساتھی، آپ کی سپورٹر تھی. اور جہاں پہ بھی کپلز میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی باہر کی جتنا بھی کچھ برداشت کر کے آ جائے، جب وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے اور بیوی کے آگے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے، تو بیوی اس کو کنسول کرتی ہے، اس کو کمفرٹ دیتی ہے، جس سے اس کا سارا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی بھی نازل ہوئی تھی، تو فوراً حضرت خدیجہ کے پاس ہی آئے تھے، ان کو آ کے بتایا تھا. تو وہ سمجھ لیں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورس آف اسٹرینتھ تھی، یعنی آپ کو دلاسا دینے والی، آپ کی ہمت بندانے والی، آپ کو کمفرٹ دینے والی، آپ کی سپورٹر. تو جب انسان اپنے گھر میں چلا جاتا ہے نا، وہ ساری چیزوں کو پھر باہر چھوڑ دیتا ہے، اگر گھر میں ایسا غم گسار ساتھی ہو. اور باہر کی دنیا میں आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू तालिब थे। अबू तालिब भी आपके चचा, आपके बहुत बड़े सपोर्टर थे। चाहे वो इस्लाम नहीं लेकर आए, लेकिन उनकी सपोर्ट का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि शेबे अबी तालिब में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को समझ लें एक बायकॉट था, और समझ लें एक कैद में उनको रख दिया था, क्योंकि कोई भी उनके साथ कोई ताल्लुक रखने को तैयार नहीं था। उन्होंने मुआहदा कर लिया था कि इनसे मुकम्मल बायकॉट, ना कोई इनको कुछ देगा, ना इनसे कुछ लेगा, कोई खरीदना बेचना कुछ भी नहीं। इतने सख्त हालात थे, इतने सख्त हालात थे कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हम रात को सो नहीं सकते थे। क्यों? भूखे बच्चे जब चीखें मार मार के रोते थे तो उनके रोने की आवाजें हमें सोने नहीं देती थी। इतने मुश्किल हालात थे, यानी पत्ते खा के उन्होंने गुजारा किया, और किस तरह से उन्होंने उन हालात का सामना किया। अब मुसलमान तो उसमें थे ही थे, अबू तालिब मुसलमान नहीं थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती कि उनकी सपोर्ट कितनी थी कि वो इन मुसलमानों के साथ आके शेबे अबी तालिब में समझ लें एक बायकॉट वाली जिंदगी वो भी गुजारने लगे। अब आप सोचें कि जो बाहर सपोर्टर, और इनकी वजह से, अबू तालिब ही की वजह से मुशरिकीन ने मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई हाथ नहीं डाल सके थे, तो वो आउट जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, क्योंकि वो सरदार थे। अब घर में जो प्यारी बीवी थी, साथी थी, वो चली गई। बाहर जो सपोर्ट थी वो भी दुनिया से चली गई। और तीसरा वाक्या एक ऐसा हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ओहद के दिन से भी ज्यादा आपके लिए कोई मुश्किल दिन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ताइफ का दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन था। और वाकई जब आप उस वाक्य को पढ़ते हैं ना, तो जो उन लोगों ने सलूक किया नबी अलैहिस्सलाम के साथ, सुन के आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि मेरे नबी पे ये गुजरे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरा उतारी। आप सोच सकते हैं जो जिस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं उसके साथ इस सूरत की, इसका मतलब कोई रेलेवेंस होगी ना? कोई चीज इस सूरत में ऐसी होगी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली देने वाली होगी, दिल को बांधने वाली होगी। ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर चूंकि इस कदर ज्यादा जुल्म सितम बढ़ गया था, इसके बाद ही हिजरत हुई है, तो जाहिर है हिजरत के करीब का टाइम तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत सख्त था। तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप हमें कोई वाकया बताएं जो कि पिछले लोगों का था जिससे हमें तसल्ली मिली। तो ये सूरत नाजिल हुई। और एक और रिवायत इस बारे में आती है कि मुशरिकी ने मक्का यहूद के पास गए, यहूद मदीना के पास, और उनसे कहा, क्योंकि उनको वो बहुत अहले इल्म समझते थे ना, किताब वाले समझते थे, कि हमें कोई ऐसी बात बताओ, ऐसा सवाल हम इनसे पूछें कि ये लाजवाब हो जाए, जो इनको आता ना हो। तो यहूदी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य को जानते थे, मगर बहुत डिटेल से नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे इस बारे में पूछें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये पूछें, बनी इसराइल मिस्र कैसे आए, वो तो फलस्तीन से बिलोंग करते थे। तो अब मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस बारे में सवाल किया, और सवाल इसलिए था ताकि आपको लाजवाब कर दें। और जब आप लाजवाब हो जाएंगे तो फिर कहेंगे कि देखो, वो प्रोपेगेंडा करेंगे ना, देखें ये तो कहते हैं हम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इनको तो ये बात नहीं पता। तो अल्लाह ताला ने फिर ये सूरत उतारी। अब आप सोचें कि पूरी सूरत एक दफा में उतरी है, पूरी सूरा अल्लाह ताला ने एक बार में उतार दी, और इस सूरत के अंदर उन सब के लिए एक तसल्ली है कि जो ऐसी किसी सिचुएशन में है जिसमें इंसान कहता है ना कि जिधर देखता हूं दरवाजे बंद नजर आते हैं, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता, इंसान सख्त बेचैनी का शिकार हो जाता है, बाज दफा इंसान मायूस होने लगता है, इंसान सोचता है जाऊं तो जाऊं कहां, मेरे ऊपर ऐसे हालात आ गए। उस वक्त आप ये सूरा पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ऐसे हालात गुजरे हैं कि जब कहीं से कोई ओपनिंग नजर ही नहीं आ रही थी, जिधर को जाते थे उधर बंद दरवाजा। तो जिस सूरत ने हमारे नबी को तसल्ली दी, वही हमारे लिए भी तसल्ली का बायस बनेगी। और आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने खानदान के महबूब थे, फिर कैसे खानदान वाले ही दुश्मन हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ, एक ऐसे घर वालों में से ही लोगों ने आपके साथ दुश्मनी की। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैद हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेबे अबी तालिब में मैसूर कर दिया गया था, वो भी कोई कंसंट्रेशन कैंप से कम तो नहीं था। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र अपने साथ ले गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनसारे मदीना ले गए। और फिर एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और आपके दुश्मन आपके आगे झुकने पे मजबूर हो गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसी मक्का में फाते बन के दाखिल हुए और आपके जो मुखालिफ थे, आपके जान के दुश्मन थे, वही आपके सामने झुकने पे मजबूर हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने भाइयों को माफ कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। तो ये सूरत बड़ा कुछ सिखाती है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही से इसको आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसमें इतना कुछ है, इतने लेसन्स हैं, एक एक आयत लेसन्स, सबक, नसीहतें, इबरतें, बहुत कुछ हमें समझाती है। और ये याद रखिएगा कि ये सूरत किसी मामूली इंसान के बारे में नहीं है। अल्लाह के नबी तो वो थे ही थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बारे में पूछा गया तो फरमाया, इसके जब पूछा गया कि सबसे करीम इंसान कौन, सबसे करीम मुअज्जज जिसको हम कहते हैं शर्फ वाला, फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने जितना हुसन पैदा किया उसका आधा हुसन यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और बाकी आधा पूरी दुनिया में तकसीम किया। जब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो उनका हुसन देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इतना ज्यादा उनको हुसन दिया गया, ज्यादा हुसन उनके पास। फिर मोहब्बत भी इतनी मिली कि बाप की आंख का तारा थे, बचपन में ऐसी मोहब्बत मिली बाप से। स्टेटस भी, खानदान उनका अच्छा भला, खाता पीता, मालदार और नेकी में शोहरत रखने वाला खानदान था। तो ये हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर फिर वो जिंदगी में किन चीजों से गुजरते हैं। मैं जब कल आपके लिए प्रिपेयर कर रही थी सूरा, तो मेरा दिल खुद इतना दुखी हो गया इन आयात को जो आज आपको पढ़ानी है, इनको तैयार करने से, कि अल्लाह अकबर कैसे वो लोग थे, उनकी जिंदगी में क्या क्या ट्रायल्स आए, कितनी फ्लक्चुएशंस आई उनकी जिंदगी में, कि इतनी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब इंसान। इसीलिए इमाम इब्नुल कय्यम कहते हैं कि कोई आदमी तारीख में ऐसा नहीं है जिसकी नेमतों में इतना तगय्युर आया जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के आया। यानी इतनी फ्लक्चुएशन, ये कभी नीचे कभी ऊपर, अल्लाह अकबर। और बाज दफा इंसान अपने लोएस्ट पॉइंट में जब जाता है ना, तो वो उठ नहीं पाता, वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है। और बाज लोग, अल्लाह ताला माफ करे, खुदकुशियां तक करने पे तैयार हो जाते हैं। और बाज दफा इंसान हाईएस्ट पॉइंट में अपना आपको कंट्रोल नहीं कर पाता कि जब उसको उरूज मिलता है तो वो अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझने लगता है कि तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है, और वो कभी याद ही नहीं रखता कि मेरे ऊपर भी कभी कोई बुरे दिन आए थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार देखिएगा कितना जबरदस्त है। तो आप समझ आ गई कि मक्का में ये सूरत नाजिल हुई, हिजरत से कुछ अरसा पहले नाजिल हुई, आमुल हुजन के बाद नाजिल हुई, एक ही दफा में पूरी सूरत नाजिल हुई। और कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसी उनका किस्सा बयान किया गया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का तो आप हर सूरत में तकरीबन हर पारे में तकरीबन देख लेते हैं ना, लेकिन इनका कहीं और नहीं है। इनका नाम सिर्फ मेंशन्ड है सूरह अनआम में और सूरह गाफिर में, बाकी जगह तो कहीं इनका नाम भी नहीं। और इस सूरत में पूरी सूरत डेडिकेटेड है इनके लिए, इतनी यूनिक सूरह है ये कुरान में। देखते हैं तफसीर सूरह यूसुफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ आयत नंबर 1 से 20 तक का आज का हमारा लेसन है। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा हरूफ मुकतात इनको कहते हैं। हरूफ मुकतात क्या होते हैं? कता किए हुए हरूफ, कता यानी काटे हुए, यानी आप इनको अलर नहीं पढ़ रहे या अलम नहीं पढ़ते। अलिफ अलग, लाम अलग और रा अलग, और इस किस्म के हरूफ के साथ बाद सूरतें शुरू होती हैं। और ये कितने हरूफ हैं जो अल्लाह ताला ने हरूफ मुकतात के लिए यूज़ किए हैं? 14 हैं। आउट ऑफ 28 लेटर्स जो के अरबिक के हैं, उनमें से 14 हरूफ ऐसे हैं जो चुने गए हैं हरूफ मुकतात के लिए। सारे हरूफ से नहीं हरूफ मुकतात हैं। और ये एक समझ लें चैलेंज है इंसानियत को, और उस वक्त जो अव्वलीन मुखातिब थे अरब लोग, उनको एक चैलेंज था कि ये अरबी जुबान जो तुम बोलते हो और जिसमें अपने आप को इतना माहिर समझते हो, इसके ये लेटर्स हैं, इन लेटर्स से ही अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है इन्हीं लेटर्स में। और अब अल्लाह ताला तुमको चैलेंज करता है कि तुम भी ऐसा कुरान ना सही, ऐसी कोई 10 सूरतें ही ले आओ या एक ही सूरत ले आओ, इन्हीं लेटर से बना के ले आओ। लेकिन कोई बना नहीं सका। तो ये एक मोजा है कुरान का। और इनका माना क्या है? इनका माना यकीनन है, लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि हम उतना ही जानते हैं जितना नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया। ये राजों में से है कुरान के। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तिलका, ये तिलका क्या है? इसम इशारा बईद, जैसे वो हम जैसे करीब की चीजों को कहते हैं ये, और दूर दूर की चीज वो ऐसे कहते हैं ना, दूर की चीज को ये नहीं कहते। अब कहा गया तिलका ये, अब हमने ये का तो तर्जमा किया लेकिन असल में है वो। आयातुल किताबिल मुबीन, आयते हैं किताब वाजे की। अब क्यों बईद का इशारा किया गया, जबकि ये तो कुरान या किताब या आयते तो हमारे सामने। असल में इनकी शान, इनकी अजमत को बयान करने के लिए इसका दर्जा बहुत ऊंचा है, और उसके लिए फिर इस इशारा बईद इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आयात है। आयत का मतलब क्या होता है? निशानी। और आयात निशानियां हैं। किस चीज की निशानियां? अल्लाह ताला की निशानियां। ये आयतें, वैसे आप इंग्लिश में इनको कह देते हैं वर्स, ठीक है, ये नहीं बोलना चाहिए, इनको आयात ही कहना चाहिए, क्योंकि वर्स का कोई ऐसा खास माना नहीं है, आयत का माना है। और वाकई कुरान में वर्सेस नहीं, आयात है। पोएट्री में वर्स हो सकते हैं, ये ना तो कोई पोएट्री है, बल्कि ये आयात यानी निशानियां हैं अल्लाह ताला की, इनसे आप अल्लाह को पहचानते हैं। ये वो साइंस हैं अल्लाह ताला के, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और ये आयतें जो हैं, इसका मतलब ये जो जिनको हम आयतें कहते हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं जिनको हम आयतें कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने इसी फॉर्म में कुरान पाक को आयतों की फॉर्म में ही उतारा है। तो ये अल्लाह ताला ने तकसीम की हुई है, खुद नहीं बनाई हुई लोगों ने कि बाद में आए थे, जहां मर्जी निशान लगाया तो एक आयत हो गई, तो ऐसे नहीं किया। हाँ, ये कुरान पाक के जो सिपारे हैं ना, ये इंसानों ने बाद में खुद बनाए। और वो क्यों बनाए 30 सिपारे? ताकि 30 डेज में आप कुरान पाक को मुकम्मल कर सके पढ़ के, सुभान अल्लाह। तो लेकिन आयतें और सूरतें अल्लाह ताला ने खुद बताई हैं, तो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और किसमें है ये आयतें? किताबे मुबीन में। किताब का लफ्ज किससे? कहताबा से। कहताबा कहते हैं लिखी हुई चीज को, किताब लिखी हुई चीज। और अब लिखी हुई चीज की वो भी कैसी है? मुबीन, खुल्लम खुल्ला, जो क्लियर है। क्लियर किस चीज में है? वाजे किस चीज में है? कि यानी इसको समझना बिल्कुल वाजे है। इसीलिए देखे ना, आप लोग अगर सिर्फ तर्जुमा तर्जुमा पढ़ें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हाँ, जो इसकी डेप्थ में जाना चाहे, कुरान हर एक के लिए है ना, जो डेप्थ में जाना चाहे, तो ये तो फिर वो समंदर है जिसका आपको एंड ही नजर नहीं आना, इतनी इसमें डेप्थ है। और हर आयत में इतनी गहराई है। अब ये सूरह यूसुफ भी आप देख लें, इतनी गहराई, इतने सबक हैं, इतने एंगल्स हैं, और सुभान अल्लाह, इंसान दंग रह जाता है कि कायत में इतना कुछ है। तो जो इसकी डेप्थ में जाना चाहे वो और स्टडी करे, लेकिन अदरवाइज इतनी क्लियर है कि आम इंसान एक तर्जुमा पढ़ने से भी समझ सकता है। और इस तरह से भी क्लियर है कि इसमें जो जो भी जो इसकी में कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। ये क्लियर है इन आयतों को पढ़ के, इस किताब को पढ़ के, ये किताबे मुबीन है, बिल्कुल वाजे हो जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से उतरी है। तो ये मुबीन, वाजे, रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना, बेशक हमने, अनजलना, नाजिल किया हमने, उस इसको, इस किताब को हमने नाजिल किया है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत किया। तो फिर हम क्यों कहा, मैं क्यों नहीं कहा? अजमत के लिए। देखे ना आप, जो बड़े लोग होते हैं या बड़े ऐसे जो बड़े अदब से बात करने वाले, आज भी हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग हम कह के भी बात करते हैं, तो ये अजमत के लिए होता है। और इब्ने तैमिया ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला हम कह के बात फरमाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि फरिश्तों के जरिए कोई काम हुआ है, फरिश्तों का भी साथ कोई काम है, तो तब हम आता है। तो हमने नाजिल किया, इसका मतलब नजूल क्या होता है? ऊपर से नीचे को आना, यानी अल्लाह ताला ने इसको पहले लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर नाजिल किया, और उसके बाद 23 साल के अंदर आसमाने दुनिया से जमीन के ऊपर आता रहा। तो इस तरह इसका इंजाल हुआ, जो पहला है उसको इंजाल कहते हैं, लोहे महफूज से आसमाने दुनिया तक, और जो 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके उस उतरा, उसको नज़ला कहते हैं, इसीलिए नज़ला भी आता है, नज़ल अल कुरान। तो हमें ये पता चलता है कि ये कुरान ऊपर से नीचे आया है। ऊपर अनजल, ऊपर से नीचे आना होता है ना, इससे जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला जात के एतबार से हर जगह मौजूद है, नहीं, जात के एतबार से वो ऊपर है, इसीलिए कुरान ऊपर से नीचे उतरा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे ऊपर गए थे। ठीक है, तो कुरआनन अरबियन, कुरान, कुरान कहते हैं उस चीज को जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली हो किरात से। तो यानी ये कुरान है जो अरबी में। इससे आप लोग ये जो सवाल बार बार पूछते हैं ना कि जी हमने तफसीर लिखनी है और हम नापाकी में हों, तो फिर क्या हम हैज की हालत में तफसीर लिख सकते हैं या तर्जुमा लिख सकते हैं? तो तर्जुमा याद रखे कुरान नहीं है। कुरान क्या है? ये जो अरबी है ये है कुरान। ये जो आप उर्दू लिख रही हैं ये कुरान नहीं है, ये तफसीर है, ये तर्जुमा उसको कह सकते हैं, मगर उसको कुरान नहीं आप बोले। ठीक है, तो इससे पता चला ये कुरान अरबी में उतरा है। अब बाज गुमराह फिरके ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने कुरान ये उतारा ऐसे नहीं है, अल्लाह ताला ने तो एक ख्याल जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दिया, तो उन्होंने आके जो बोला तो तो वो फिर कुरान बन गया। तो अल्लाह ताला ने तो जिब्राइल को सिर्फ ख्याल डाला था, बाकी अल्फाज जिब्राइल के नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंजलना, हमने नाजिल किया इसको कुरान अरबी में, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ से काम लो, अकल से काम लो। अब आप देखें कि अकल से काम लेने का यहाँ पे कहा गया, किस चीज में अकल से काम लो ये नहीं बताया गया। यानी आपको, यानी इससे बहुत सारी अकल की बातें समझ आ जाएंगी, तुम समझो इसको। तो ये सोचने समझने के लिए है कुरान, ये इसलिए है कि आप इस पे गौर करें, अपनी अकल को दौड़ाएं, और इससे हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये जो अरबी जुबान में उतरा है ये कुरान है। तो हम अरबी को समझने की कोशिश करें, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप तर्जुमा याद कीजिए, अल्फाज को याद करें। बाज़ लोगों को ये बात बिल्कुल फालतू लगती है कि इन हमें क्यों कहते हैं जी तर्जुमा याद करने को, हमें क्यों कहते हैं कि हम वर्ड मीनिंग याद करें। वो इसलिए कि असल तो ये है कुरान, ये उर्दू थोड़ी इसका हक अदा कर सकती। और जो अरबी जुबान है ये इस कदर फसी जुबान है, इतनी जबरदस्त जुबान है, इसमें जिस तरह से बात है वो हमारी उर्दू उसकी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकती। बहुत सारी चीजें उसका जो मजा है ना वो ही खत्म हो जाता है जब इसके ट्रांसलेशन की जाए। तो अरबी में ही इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि इस पे फोकस करें, इसके वर्ड मीनिंग के ऊपर। और देखें ये अरबी जुबान आपकी और मेरी जुबान से ज्यादा जबरदस्त जुबान है, ज्यादा बेहतरी बेहतर जुबान है। अब लोग कहते हैं जो कि क्या ये हमारी जुबान तो नहीं, ठीक है आपकी जुबान नहीं, लेकिन आपकी जुबान से अच्छी जुबान है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान की जुबान है, इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, और इसलिए कि ये जन्नतियों की भी जुबान है। ठीक है, तो बहुत इसको नहीं भी इसको पूरा पूरा जान सकते, तो कम से कम कुरानिक अरबिक को तो समझिए कि आपको कुरान पढ़ने से समझ आने लगे। नहनु नक्सु अलैका, हम बयान करते हैं आप पर अहसन अल कसस, सुभान अल्लाह, जिस किस्से को अल्लाह ताला फरमा दे वो अहसन अल कसस है, तो वो कितना प्यारा किस्सा होगा। हमारी कितना टाइम ये बिल्कुल झूठी बातें, जो ये इतनी मुझे इस चीज से, इस वजह से बहुत तंगी होती है ये ड्रामों और फिल्मों और अफसानों और नावलों से, कि ये झूठी बातें हैं, और आप झूठी बातों पे कितना अपना वक्त लगाते हैं। झूठ, एक बंदा बैठा हुआ उसने झूठ लिखता रहा और आप उसके झूठ को देख रहे हैं, उसके दिमाग में जो आया। तो झूठ कम से कम मुझे तो बिल्कुल इस बात से अच्छा नहीं लगता, कितना भी कोई चीज वो हो, लेकिन आप झूठ पे अपनी जिंदगी का कितने घंटे गुजार देते। लेकिन कुरान के जो किस्से हैं ना, इनके अंदर जबरदस्त खूबी ये है कि सब सच्चे हैं। दूसरे ऐसे ही आलतू फालतू बातें नहीं है, टू द पॉइंट बात। आप देखेंगे अल्लाह हु अकबर, कहीं आप ये नावल, ये ड्रामे या ये वो देखें, या अफसाने, ये इनके अंदर क्या लिखा होगा, इतनी डिटेल, इतनी इररेलेवेंट बातें कि बात कहीं की वो उसने उसकी तरफ देखा, उसने ये कहा, उसने वो बोला, वो उठी, वो बैठी, वो खड़ी हुई, वो चली इस स्पेस पे, चली इधर, रुकी उधर, दरवाजा को, भाई इतना भी फालतू बातों का। ये हम वैसे कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं जिंदगी के अंदर, लेकिन इन फालतू चीजों पे अपना वक्त गुजारते हैं। और आप कुरान के कसस को देखें, जितने किस्से हैं सब के सब इतने बेहतरीन है, इतने टू द पॉइंट है, कोई फालतू बात ही नहीं है उनके अंदर कि आप कहीं और ही पहुंच जाएं। अब बाज लोग भी जो तकरीर करते हैं, टॉपिक कुछ है, पॉइंट कुछ बनाना है, और वो दूर इतनी पहुंच जाते हैं कि फिर वो वहां से वापस आना कभी मुश्किल होता है उनको, कि जब तक वापस आते हैं टाइम ही खत्म हो जाता है। तो बात टू द पॉइंट बात बेहतरीन बात है। इसी तरह इन किस्सों में इस कदर सबक है एक इंसान के लिए, उसकी जिंदगी के लिए इतनी नसीहतें हैं कि आप कहीं और नहीं ऐसे सबक ले सकते। और दूसरी ये बात, एक तो इस तरह से ये बेस्ट है किस्सों में से, और दूसरे अगर अल-कस्सस को मसदर के तौर पर ले तो इसका मतलब ये है कि इसका बयान करना बेस्ट है, यानी अल्लाह ताला ने इसको बेस्ट तरीके से बयान फरमाया। तो एक माना क्या है, ये बेस्ट है तमाम किस्सों में, अहसनुल कसस है, किस्सों में से बेस्ट किस्सा। दूसरा मतलब क्या कि इसका असलूब, इसका तरीका, इसका बयान करने का वे जो है वो बेस्ट है। बीमा औहैना इलैका हादल कुरआन, जो हमने वही कर रहे हैं हम आपकी तरफ इस कुरान में, हम इस किस्से को आपकी तरफ, जो किस्सों में बेस्ट किस्सा है, इसको हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ इस कुरान में। वह इन कुंता मिन कबली लमिन अल गाफिलीन, और आप इससे पहले गाफिलों में से थे। एक्चुअली अरब लोग जो थे ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कौन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैंने आपको बताया यहूदी लोग फिर भी जानते थे, अरब लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अल्लाह ताला के वही भेजने से पहले इसका इल्म नहीं रखते थे। गाफिलीन से मतलब ये नहीं कि गफलत में थे, नहीं, इसका मतलब ये कि इस चीज का पता ही नहीं था आपको। तो आप सोचें कि इसका मतलब कुरान है जिसके जरिए इंसान को राह पता चलती है, हिदायत मिलती है। अगर रसूल भी अपने तरफ से कुछ इल्म नहीं जान सकते कुरान के उतरने से पहले, नहीं जान सके वही आने से पहले, अल्लाह ताला ने फरमाया ना वजदक दौलन फहदा, आप रास्ता गुम नहीं, इसका मतलब कि आप, अल्लाह माफ करे, गुमराह थे, रास्ते पे नहीं थे, कोई राह नहीं थी आपके पास, कोई आपको पता नहीं था रास्ते का, तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी। तो अगर नबी के लिए ऐसा है तो मेरे और आपके लिए क्या कुरान के बगैर ही हमें हिदायत मिल जाएगी? हिदायत का सरचश्मा तो कुरान ही है, हिदायत का सोर्स है कुरान। जिसको हिदायत चाहिए, जो राह देखना चाहता है कि सीधी राह क्या है, जो सच्चाई को पाना चाहता है, वो इस कुरान की तरफ आए। अगर ये कोई सोचता है कि मैं अपनी अकल से ही राह पा लूंगा और कामयाबी पा लूंगा और जन्नत तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे, इससे पहले इल्म नहीं था, तो हम, मुझे और आपको कैसे होगा? तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाद में ही पता चला, इस वही के आने से पहले आपको कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मालूम नहीं था। और ये बात बहुत बड़ी दलील है इस चीज की कि आप अल्लाह के नबी हैं। कैसे? इसलिए कि आप अपनी तरफ से नहीं ये बातें ला सकते थे। अगर वहां पे कोई यूनिवर्सिटी होती, कोई कॉलेज, कोई इंटरनेट, कोई स्कॉलर होते, तो फिर भी आप कह सकते थे भाई किसी से सीख लिया, वहां पे तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। फिर आपने कहाँ से पढ़ा ये? आपको कहाँ से पता चला ये? आप किधर से ये इंफॉर्मेशन लेकर आए? इससे पता चला कि आपके पास वही आती है, और यही दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप खुद तो बना नहीं सकते थे, वहां पे भी किसी को ऐसा खास नहीं पता था कि कोई, अरबों में तो बिल्कुल ही नहीं पता था, उनसे भी नहीं पूछ के ला सकते थे। यहूदियों ने तो खुद चैलेंज दिया था, और उनके पास भी थ्रू आउट पूरी स्टोरी ऐसे नहीं थी जैसे यहाँ पे हमें मिलती है, थोड़े थोड़े वाकयात थे, तो फिर कहाँ से लाए? तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये दलील है इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और आपकी नबुवत की दलील में ये आयत है। इद काला यूसुफ ली अबी, अब यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से शुरू होता है। थोड़ी सी यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली के बारे में आपको बता दूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन, ये दो बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, जो उनकी एक वाइफ से थे, जिनका नाम बताया जाता है कि राहील था। और बाकी जो बेटे थे वो इनकी एक और औरत से थे, और उनसे 6 बेटे पैदा हुए। फिर एक और बीवी थी उनकी, जिनसे 4 बेटे पैदा हुए। तो ये दूसरी बीवियों से 10 बेटे थे, और राहील से ये सिर्फ दो बेटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। ठीक है, तो कुल ये 12 भाई हो गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। एक तो इसकी ये भी वजह थी कि इनकी वालिदा बिन्यामीन की बर्थ के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, हालत निफास में ही वो फौत हो गई थी। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, अभी ये बिन्यामीन इनसे भी छोटे थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी पता चलता है कि इनको इनकी फूफी अपने साथ ले गई थी, वो भी बहुत प्यार करती थी इनको, तो उन्होंने समझ लें इनको अपने घर ले गई। और फिर उनका दिल नहीं चाहता था कि इनको वापस भेजें। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जब मांगा तो उन्होंने कहा, फूफी ने कहा, मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकती। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी नहीं इसके बगैर रह सकता। तो उनकी बहन ने कहा, अच्छा इसको चंद दिन मेरे पास रहने दें। याकूब अलैहिस्सलाम उनके पास से चले गए। तो उनकी बहन ने एक मंतका था, एक कपड़ों के नीचे जो कमर बंद होता है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर के साथ बांध दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरा तो मंतका जो है वो गुम हो गया, कमरबंद गुम हो गया, सब उसको तलाश करें। और उनके जमाने में ये था कि अगर कोई किसी की चीज चोरी कर लेता था तो उसको, उस जिससे वो चीज निकलती थी ना, उस बंदे को उस चीज के मालिक के हवाले कर दिया जाता था। अब जब वो कमरबंद यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हवाले कर दिया गया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास रहे, हत्ता कि वो फौत हो गई। जब वो फौत हो गई तो फिर वापस याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो इस तरह से ये भी इनकी जिंदगी का एक वाक्य हुआ, क्योंकि ये वाक्य बाद में आएगा भी। अब क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहा जाता है तफासीर में है, 7 साल के थे या 7 से 10 साल की उम्र के दरमियान थे, इस तरह से कुछ इनकी उम्र बताई जाती है। कि जिस वक्त ये अपने वालिद के पास आए, इद, इसका मैंने आपको बताया था, ये लफ्ज तब आता है जब ये कहा जाता है याद करो, जब, यानी जब हम इसको उर्दू में तो इस तरह, अब इंग्लिश में वेन कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो इसके लिए हो। इद, बस जैसे हम कहते हैं ना, याद करो जब कभी ऐसा हुआ था, कोई वाकया बयान करने के लिए, उसके लिए इज आता है। तो जब भी आप ये लफ्ज देखें, फिर ये जहन में आपके ये मीनिंग होना चाहिए। इज कॉला यूसुफ, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ली अभी ही अपने वालिद से, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, और ये बड़ा ही प्यार का सीगा है, या अबती, या अभी भी नहीं, या अबती। अब ये थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये इस वक्त ना फलस्तीन के इलाके कनान में है, ठीक है, कनान में ये रह रहे हैं, और ये 19 BC का वाक्य है, कबले मसीह का। तो उन्होंने क्या फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इन्नी रअयतु तो अहद अशरा कौकबन, मैंने देखा है यानी ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद, रई तू हूं, मैंने देखा उनको, ली लिए मेरे सजदा करने वाले। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आए और उनको अपना ख्वाब बयान किया। अब यहां से हमें थोड़ा सा ख्वाब के बारे में भी समझना है, क्योंकि हमारे दीन में ख्वाबों की भी अहमियत है। ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी नहीं होता ख्वाब, मगर हाँ, हर ख्वाब भी कोई सच्चा ख्वाब नहीं होता। ख्वाब असल में 3 तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब के जो इंसान दिन में कुछ भी करता रहा, या जो भी उसने कोई मूवी देख ली, कोई ऐसी कोई ऐसा बात पढ़ के, कोई ऐसी खबर सुन के, फिर वो सोया है, फिर कोई ख्वाब में आ गई, या उसको प्यास लगी हुई थी, ख्वाब में पानी देख रहा है, भूख लगी हुई थी तो खाना देख रहा है, या कोई किसी चीज की बड़ी चाहत थी, उसको ख्वाहिश थी, या उसका दिल कर रहा था कुछ करने का, वो ही ख्वाब में आ गया। किसी से मिलना चाहता था, वो ख्वाब में आके मिल, ये ख्वाब में देख रहा है कि उससे मिल रहा है, या कोई अपनी बड़ी उसका गोल है, वो उसके लिए बड़ी स्ट्रगल कर रहा है, वही चीज ख्वाब में आ रही है। तो इस तरह से कि ख्वाब जो होते हैं ना, वो बस कोई ऐसा वो नहीं होते, वो इमेजिनेशन से ही इंसान के होते हैं, उनकी कोई ऐसी हकीकत नहीं होती, ठीक है। और वो ख्वाब भूल भी जाते हैं अक्सर इंसान को फिर उसके बाद। दूसरे ख्वाब जो होते हैं, जो शैतान की तरफ से होते हैं, यानी उनमें ख्वाबों के अंदर आपको डराने वाली चीजें आती हैं, और ख्वाब से उठते हैं तो आपका दिल गमगीन होता है, या आप डरे हुए होते हैं। अब ये शैतान की तरफ से होते हैं, ये शैतान ख्वाबों में आके इंसान को डराता है। तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब उठें तो औजु बिल्ला पढ़ें, औजु बिल्ला मिन शैतान रजीम, और लेफ्ट साइड पे अपना थुत्कार दें, ऐसे थु 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 थु, ऐसे कर दें 3 दफा, ठीक है, और करवट बदल के लेट जाएं। तो इसमें भी ये शैतानी चीजें होती हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती, ये बस शैतान आपको ना गमगीन करना चाहता है। और इन इस तरह के ख्वाबों को भी किसी को बताना नहीं चाहिए, इनकी कोई हकीकत नहीं है। फिर एक ख्वाब वो भी हैं जो सच्चे ख्वाब होते हैं, और ये नबियों को तो हमेशा सच्चे ही ख्वाब आते हैं, आम इंसानों को भी आ सकते हैं, और इनमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई बशारत भी हो सकती है, कोई फ्यूचर के बारे में वार्निंग भी हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई इंडिकेशन हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबुवत में, अब नबुवत तो खत्म हो गई है, नबुवत में से सिर्फ मुबशिरात ही बाकी रह गई हैं। तो लोगों ने पूछा मुबशिरात क्या है, फरमाया खुशखबरियां, वो जो इंसान अपने लिए खुद देखता है या कोई और उसके लिए देख लेता है, वो खुशखबरी होती है उस इंसान के लिए। आपके लिए कोई और आपके बारे में ख्वाब देख ले और उसमें गुड न्यूज हो, या आप अपने बारे में खुद देख लेते हैं, वो भी खुशखबरी आप उसमें पाते हैं। तो ये नहीं कोई नबी बन गया इसके बाद, नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, नबुवत के इल्म का ये एक हिस्सा, नबुवत तो खत्म हो गई है लेकिन ये भी नबुवत के इल्म का एक हिस्सा, मुबशिरात। अब पता है नबी अलैहिस्सलाम को अभी जब वही आना शुरू नहीं हुई थी, तो उससे पहले सच्चे ख्वाब आने शुरू हो गए थे, जो ख्वाब में देखते थे वैसे ही हो जाता था। तो ये नबुवत का, इसको हदीस में कहा गया कि नबुवत का 146th हिस्सा है ये सच्चे ख्वाब जो होते हैं, ठीक है। और इन सच्चे ख्वाबों में भी बाज ख्वाब में तो बिल्कुल आप क्लियर कोई चीज देख लेते हैं, और बाज ख्वाबों में इशारा होता है, जैसे यहां पर आप देखें इशारे हैं, शम्स और कमर और सितारे। इट डजंट मीन कि शम्स और कमर ही आ गए, सूरज चांद ही तो नहीं आ गए, लेकिन कोई किसी चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब आप अगर बुखारी वगैरह देखें, किताबुर रुया, पूरी ख्वाबों के ऊपर किताब है, ताबीर उसके अंदर कैसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था, तो आप इंटरप्रेट किया करते थे लोगों के ख्वाब को, सुबह को लोगों से पूछते थे कि आपने आज फजर के बाद पढ़ के, फिर लोग अपने ख्वाब बताते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताबीर बयान फरमाया करते थे। किसी ने दूध देखा है तो उसको फरमाया इल्म है, किसी ने कुर्ता देखा तो उसको फरमाया ये दीन है उसका, इस तरह से। लेकिन ये इल्म वो है जो हर एक के पास नहीं है, कि आप जिसको देखें तो उसे ख्वाब पूछना शुरू हो जाए, ये मुझे बताओ इसका क्या मतलब, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये इनका इल्म हर एक को नहीं मिलता, और ये कहीं से कोई सीख भी नहीं सकता, ये अल्लाह ताला ही किसी को ये इल्म दे दे। और इसमें भी आप उम्मत में देखें तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया हुआ था, लेकिन एक दफा किसी ने ख्वाब बयान किया तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं इसका बताऊं ताबीर इसकी, बुखारी में ये हदीस है। तो उन्होंने इंसिस्ट किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है बता दो। तो उन्होंने जो ताबीर बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें सही नहीं है जो ताबीर आपने की है। तो इसका मतलब अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जिनके पास इतना नॉलेज था, वो भी 100% नहीं ताबीर कर सके सही, तो कौन सा ऐसा बंदा होगा जो 100% ही सही करके आपको बता दे। तो उसमें बहुत कुछ देखना होता है। आजकल ऐसे प्रोग्राम भी शुरू हो गए कि कोई जी बैठे में उनको लोग फोन कर रहे हैं, वो जी लोगों की ताबीरें ख्वाबों की बता रहे हैं, हालांकि इसमें किसी इंसान के हालात वाकयात, उसकी क्या कंडीशन थी, क्या कैफियत थी जिस वक्त वो सोया, और ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और ख्वाब दिन के भी सच्चे हो सकते हैं, रात के भी सच्चे हो सकते हैं, तो ये भी बुखारी की हदीस से आपको पता चलता है। आप सल्लम को दिन में भी ख्वाब आया था, तो सच्चा ख्वाब था। तो अब ये हमें इससे पता चला एक ये बात कि हाँ, सच्चा ख्वाब भी जो है ना, वो आप हर एक को बयान नहीं करें, क्योंकि आगे ये बात आ रही। चले आगे ही देखते हैं फिर। अब ये जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, पहली बात ये नोट करें कि वो किसके पास ख्वाब बयान करने के लिए आए। हमें ख्वाब आ जाए, कोई अच्छा ख्वाब आ जाए ना, कुछ में जिसमें हमें बड़ा लग रहा कि ये बंदे बंदे को पकड़ के बताना शुरू कर देते, मुझे तो ये ख्वाब आ गया। जैसे हम सोचते हैं कि बड़ी एक खुशखबरी की बात है जो मैं सबको बताऊं, हालांकि इससे मना फरमाया गया। क्या कहा गया कि आपको कोई अच्छा ख्वाब आ जाए ना, तो एक तो जो आपका हमदर्द, जिसको आप समझती हैं, जो आपसे मोहब्बत करने वाला, जो आपका खैर ख्वाह है, हमदर्द तो नहीं, खैर ख्वाह है जो आपका ना, उसको बताएं, और जो समझदार भी हो। ऐसे ही हर एक को नहीं, क्योंकि कोई आपको ख्वाब की कोई ताबीर अगर बता देगा ना, तो वो वैसा ही हो जाएगा। ख्वाब की जब तक ताबीर नहीं बताई, वो परिंदे की तरह, जिस वक्त आपने उसकी ताबीर कर दी ना, या इसीलिए बुरा ख्वाब भी नहीं किसी को बताना, क्योंकि उसकी ताबीर अगर किसी ने कर दी, वो वैसे ही हो जाएगा। जब तक नहीं की ताबीर, तो वो आजाद है। तो अब इन्होंने जो ख्वाब बयान किया, तो वालिद साहब समझ गए कि ये ख्वाब मामूली ख्वाब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सितारों को, सूरज और चांद को यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुकते हुए उन्होंने देखा। कोई मामूली बात नहीं, बहुत यूनिक सी बात है, एक डिफरेंट बात है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये सूरज और चांद माँ और बाप है, और 11 सितारे इनके 11 भाई हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुकेंगे। मतलब सूरज चांद सितारे, बाप तो याकूब अलैहिस्सलाम थे, और इनकी वालदा, जो इनकी अब खाला थी, वो ही वालदा बन गई थी, यानी उनसे ही शादी कर ली थी इनकी खाला से, जब इनकी वालदा की वफात हो गई थी, तो वो भी खाला भी माँ बजाई होती है, और वैसे भी सुतेली माँ ही थी। तो यानी एक वक्त आएगा कि ये झुकेंगे, यानी मतलब ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दर्जा शर्फ में, बुजुर्गी में इतना बुलंद होगा कि उनके वालदेन और भाइयों से भी ऊपर हो जाएगा। ये पता चल रहा है आपसे, तो इससे समझ गए वो। लेकिन आप देखें कि एक बच्चे ने आके बाप को बिला झिझक अपना ख्वाब बयान कर दिया, और इससे हमें रिलेशनशिप पता चलता है कि एक बाप और बेटे का कितना प्यारा रिलेशनशिप था। कि अक्सर बच्चे तो होते हैं ना, वो कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो कहते हैं हम अपने माँ बाप को ना बताएं, वो मैड हो जाएंगे, वो गुस्सा होंगे, वो इस तरह होंगे। तो इसलिए अक्सर बच्चे वालदेन से ही सबसे ज़्यादा छुपाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि कितना कॉन्फिडेंस दिया होगा बाप ने कि बच्चा आके मेरे पास बात कर ले। ठीक है, ये भी एक अच्छे रिलेशनशिप का पता देती है ये बात। आप देखिए कुरान पाक में लुकमान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की भी बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी बात है, इस तरह बाप बेटों की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आज़र जो उनके वाले थे, तो उनकी भी बात है। तो इस तरह बाप बेटों की बहुत जगह पे बातें आई हैं। कहा या बुनैया, उन्होंने फरमाया ए मेरे बेटे, और या बुनैया भी तसगीर, तसगीर जब भी होती है ना, या बुनैया, या इब्नैनी कहा, बुनैया कहा ना, बनी नहीं कहा, तो बुनैया में तसगीर। ये भी आप देखें कि ये यहाँ पे नहीं होती, हमारे हमारे उसमें नहीं होती लैंग्वेज में, मगर थोड़ा सा आपको इससे बता देती हूँ कि जैसे आप भी किसी का ऐसे छोटे का कोई नाम रखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का भी नाम लें, उमर से उमरी, इस तरह से करके आप कह दें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को आयश कहते, प्यार से आयश कह देते थे। तो ये तस्वीर ना प्यार के लिए होती है। तो इब्न की जगह बुनैया, ठीक है। ला तखसुस, ना तुम बयान करना रुया का, अपने ख्वाब को, अला इख्वती का, अपने भाइयों के आगे, फयकीदू लक कईदा, तो वो वरना चाल चलेंगे तेरे लिए एक चाल। यानी अपने भाइयों के आगे अपने इस ख्वाब को बयान ना करना, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल ख्वाब था। इस ख्वाब के अंदर पता चल रहा है कि इनका मर्तबा कितना बुलंद होने वाला है। तो ये ना हो कि ये ख्वाब की ताबीर वो कर लें और वो उनको ख्वाब से जाहिर हो जाए कि ऐसा इसका मकाम होगा, तो वो उसकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जाहिर है अपने बेटों को तो जानते थे ना कि उनके बेटे क्या हैं, कैसे हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता था। जानते होंगे कि अच्छा नहीं लगता इनको कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों प्यार करता हूँ ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने अपनी औलाद का सबको पता होता है, तो उन्होंने भांप लिया कि ये चीज उनको पसंद नहीं आएगी तो उनके आगे ना रखना। इससे आपको पता चल रहा है ना कि ख्वाब हर एक को नहीं बयान करना होता। आपको नहीं पता कि कौन हसद करने लगे। इसी तरह अपनी नेमतों का भी इजहार हर एक के सामने नहीं करना होता कि आप फेसबुक पे लगा रहे हैं, आप वो जो आपकी जो भी इंस्टाग्राम है, ये है, इन चीजों के ऊपर आप अपनी तस्वीरें लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप अपनी नेमतों को शो ऑफ बहुत कर रहे हैं। चलो यहाँ पे नहीं भी लगाते, आप शो ऑफ इतनी करते हैं अपनी शादियों पे, अपने और फंक्शन पे, इतने एक्स्ट्रावेगेंट आप हो जाते हैं। उसके बाद फिर रोते हैं कि हाय हमें तो ये हो गया, उसके बाद नुकसान, और हमारे तो उसके बाद जिंदगी बस डाउनफॉल हो हमारा शुरू हो गया, जिंदगी खराब हो गई ऐसे। तो क्यों आपने अपनी शो ऑफ की, नेमतों को शो ऑफ ना करें, ऐसे उनको उनके बारे में ब्रैग ना करें। क्यों? इसलिए कि इससे हसद पैदा होता है। हसद क्या चीज होती है? जिस चीज की वजह से ही यहां पे भी याकूब अलैहिस्सलाम ने रोका है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो क्या है कि खतरा है कि हसद आ जाएगा। और हसद, अब आप कहें मुझे क्या, हसद करते रहे लोग, लेकिन हसद भी इंसान को नुकसान देता है। जब कोई हासिद हसद करने लगता है ना, मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, क्यों कहा गया कि हासिद का शर होता है उसके हसद का, जो इंसान को लग जाता है, यानी बद नजर लग जाती है, बुरी नजर जिसको कहते हैं आप, तो वो लग जाती है इंसान की नेमतों को, जवाल पजीर हो जाती है। इसलिए इंसान अपनी नेमतों को इस तरह शो ऑफ करके ना हर वक्त दिखाए। कोई लोग अपने बच्चों की पिक्चर्स डाल देंगे, उनका कुरान पढ़ना या उनकी चीजें डाल देंगे एकदम, उसके बाद कहते हैं पर बच्चे का पता नहीं क्या हो गया, उसके लिए ये मसला हो गया। कोई लोग अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस डाल देते हैं कि हम देखें कितने खुश हैं और हम कितनी वेकेशंस पे गए हुए हैं, और ऐसे हसद आ गया। हसद क्या चीज है? कि इंसान दूसरे की नेमत को देखकर उसका दिल करे कि इससे ये नेमत छिल जाए, चाहे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन इसके पास ना रहे, उससे उसको जल जाता है उसकी नेमत देख के, उसके दिल परेशान हो जाता है इसकी नेमत देख के कि इसके पास क्यों है, बस क्यों इसको मिल गया, अब मुझे क्यों नहीं मिला, ये भी हो सकता है, या मुझे मिले ना मिले, बस इसको क्यों मिला है, क्यों इसके बच्चे अच्छे निकल आए, क्यों ये हर वक्त ऊपर, इनकी तरक्कियों की बातें हमें पता चलती हैं, क्यों ये ऊपर ही ऊपर जाने शुरू हो गए हैं, क्यों इनके घर इतना अच्छा हो गया, क्यों इसकी शादी इतनी जगह अच्छी जगह हो गई, क्यों इसके बच्चे इतने पढ़ लिख गए। वो जो क्यों होता है ना, ये जो हसद करने वाला इंसान है, इसके अकीदे में खराबी होती है। ये इंसान जो होता है, ये इसका मतलब इसको अल्लाह की तकसीम के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि अल्लाह ने इसको क्यों दिया, क्योंकि दिया तो उसको भी अल्लाह ने है, तो इसको क्यों मिला। अब आपको ये अगर हो जाए कि इसको क्यों मिला, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सही फैसला किया। नाउज़ुबिल्लाह, आप ये कहना चाहते हैं अल्लाह ताला को इसको नहीं देना चाहिए था, यानी अल्लाह ताला, अल्लाह माफ करे कि अल्लाह ताला ने उसकी मर्जी जिसको चाहे दे, लेकिन आप ये समझते हैं इसको नहीं बस मिलना चाहिए। और ये अक्सर अपनों में ही होता है। अब किसी गैर को क्या मिल रहा है, अब आप बिल गेट्स के पास इतना माल दौलत है, उससे कोई नहीं हसद करेगा, हम बैठे हुए उससे थोड़ी हसद करते हैं, लेकिन जिनको हम जानते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे वाकिफकार, हमारे रिश्तेदार, उनमें ही हसद आता है। और ये इतनी बुरी चीज है कि आप सरसर ने फरमाया हसद जो है ये जिस दिल में आ जाता है ना, तो ये नेकियों को चाट जाता है ऐसे जैसे कि आग लकड़ी को, सूखी लकड़ी को जला देती है, इस तरह उसकी नेकियां सारी जल जानी है। और हसद देखिए दिल का, दिल के अंदर होता है ना, दिल का काम है। इसका मतलब दिल की भी हर चीज ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई पकड़ ही नहीं है, दिल की भी बात चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर भी पकड़ होगी, जिनके ऊपर भी पूछ होनी है। यह सद है, कीने हैं, आपको पता है कीने के ऊपर भी पूछ है। तो ये चाहे दिल के अंदर हो इंसान के ऊपर, इसकी आखरत में जवाबदेही करनी पड़ेगी, पकड़ होगी इसकी। इसलिए इंसान को इससे फाइट करना चाहिए कि मेरे अंदर से ये हसद ना आए। अगर नहीं बिल्कुल आप इस चीज से वो कर सकते, तो ऐसे लोगों से जिनसे हसद है आपको हो रहा होता है, उनसे दूर हो जाएं, उनके बारे में बातें मालूम ही ना करें। अगर कंट्रोल नहीं हो पाता, अगर तो अपने आप पे कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए ये हसद ही था जिसने पहला कत्ल कराया, वो हसद ही तो था। ये हसद ही था जो शैतान को हुआ था आदम से। इसको क्यों मिला ये रुतबा, इसको क्यों कह दिया कि ये इसको फरिश्ते सजदा करें? क्यों? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे तो मिला नहीं और इसको क्यों मिल गया? देखिए ना, ये कहाँ तक उसको शैतान लईन को किधर तक पहुंचा दिया इस हसद ने। तो ये ऐसी चीज है कि जिसको आप अपने लिए समझें कि मुझे गारत कर देने वाली चीज है, उसको बाद में नुकसान पहुंचेगा जिसको से आप हसद करते हैं, लेकिन खुद अपने आप को सबसे पहले पहुंचेगा। तो ऐसा आ जाए ना, और दूसरे की नेमत को देख के कहें फौरन माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर सोचे कि ये अल्लाह की तकसीम है, जिस अल्लाह ने इसको दिया वो अल्लाह मुझे भी दे सकता है, तो मैं अल्लाह से अपने लिए मांगती हूँ। और बार बार दूसरों की नेमतों की टोना लगाएं कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, और बाकी लोग भी शो ऑफ करने से बचे, खुद को क्यों खुद खतरे में डालते हैं? तो उन्होंने फरमाया वो तुम्हारे खिलाफ चाल ना चले, तो हासिद की से एहतियात करने का, यानी यहां पे कहा जा रहा है जितनी हद तक आप एहतियात मुमकिन है। कई चीजें तो आप नहीं छुपा सकते, ठीक है, छुप ही नहीं सकती, लेकिन कई चीजें जहां पे छुप सकती हैं उनको छुपाया जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि अपनी हाजात की तकमील के लिए कितमान से काम लो, जी छुपाओ अपनी। अभी बात शुरू नहीं हुई, आप सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, क्या पता कोई हसद कर रहा हो, क्या पता? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर साहिब नेमत हसद किया जाता है, जिसके पास कोई नेमत आती ना कोई उसका हासिद भी पैदा हो जाता है। हम तो लोगों को देख के सोचते हैं आप देखो कितना खुशकिस्मत, आपको क्या पता उस बेचारे के पीछे कितने हासिद लगे। इन शैतान लिल इंसान आदु व मुबीन, बेशक शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन है। अब वो क्यों कह रहे हैं बेटे को शैतान खुला दुश्मन है? इसलिए कि ये शैतान इंसान के अंदर ऐसी बातें डालता है, हसद की बातें, इस तरह की दूसरों को लड़वाने की। तो याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि भाई दिल के अंदर ऐसे इन यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ जज्बात रखते हैं, और अब वो शैतान को कह रहे हैं कि शैतान इंसान का दुश्मन है। तो अब अभी तो भाइयों की बात हो रही थी, अब शैतान की क्यों बात हुई? ये नहीं ना फरमाया कि तुम्हारे भाई बहुत बुरे हैं, कितने हासिद हैं, देखो वो तुमसे तो जलते हैं, तुम बस उनसे दूर रहना। इस तरह की कोई बात नहीं कही। अब कोई और हो तो कहेगा देखो वो तुम्हारे से कितना जलती है, अब उसको भड़का दे, इधर भी आग लगा दी, उधर भी आग लगी हुई है, ताकि लड़ मर जाए। भाइयों को भाइयों के साथ इसी तरह लड़वाया जाता है। अब चाहे वो हसद करते थे और सके भाई ऐसा हसद करते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे भाई देखो तुम्हारे दुश्मन है, कहा शैतान तुम्हारा दुश्मन है। और यही करना चाहिए कि अगर किसी के साथ पता भी है ऐसी बात का, तो ये कहें कि शैतान ये कर देता है, ये ना कहें ये तुम बड़ी चालाक हो और ये फलां बड़ी पक्की है, वो बड़ी चालबाज है, कहें शैतान ऐसा करवाता है। और इससे क्या होगा कि जो दूसरा बंदा जिसको आप कहेंगे ना, अगर आप कहेंगे किसी को कि देखो तुम तो अच्छी हो मुझे पता है, लेकिन शैतान इस तरह के काम करवाता है, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर एक इसलाह का दरवाजा खुला रहेगा कि वो कहेगी मैं ठीक होने की कोशिश करूं। और अगर आप किसी को ही कह दें तुम ही बुरी, तुम ही ऐसी, तुम ही हासिल, तुमने, तो वो कहेगा ठीक है मैं तो फिर ऐसा ही हूं। और वैसे भी ये एक डायरेक्ट इसको किसी को ना कहा जाए, बल्कि शैतान को बीच में लाया जाए। और दूसरी ये भी बात है कि इस में कोई इंसान जो खुद है ना, वो खुद अपने लिए ये ना कहे मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो शैतान ने ही सारा करा है, ये नहीं कहे। इसलिए कि तब इंसान को अपने ऊपर ये लेना चाहिए कि जो है मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ऐसा किया है। शैतान पे इल्जाम डाल के खुद अपनी बेकसूरी का रोना ना रोए, मैं तो बेकसूर, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए हालांकि शैतान ने ही बहकाया था आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन आप नोट करें आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं ये कहा कि अल्लाह ताला अगर निकालना तो शैतान को निकालता, मुझे क्यों निकाला, मैंने क्या कसूर किया, मुझे तो शैतान ने ही कहा था उसका कसूर है। नहीं, उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ठीक है, तो हम अपने जब कसूर होते हैं तो फिर शैतान पर डाल देते हैं, दूसरों के कसूर होते हैं तो कहते हैं तूने ही गलत किया। अपने कसूर के लिए नहीं कहना चाहिए मैंने गलत किया, और दूसरों को ये कहना चाहिए कि शैतान ने आपसे करवा ले। ऐसे बच्चे भी बाज दफा होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम ये करना है काम। अच्छा आगे उसकी बात आएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा फिर आप ये भी यहाँ पे देखें कि शैतान का कहा कि खुला दुश्मन है, इसका मतलब कुरान भी कई जगह पे आया है कि अदुव मुबीन है तुम्हारा, तो तुम इसको दुश्मन समझो। और जब आपको पता होता है कि आपका कोई दुश्मन है ना, तो इंसान उसे अलर्ट रहता है, और शैतान दुश्मन है, वो दुश्मनी करेगा, वो दिलों में डालेगा बातें, वो अपना पूरा जोर लगा लेगा, लेकिन वो किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता, सिर्फ वसवसे डाल सकता है। अच्छा आप ये भी आप देखें कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की नेचर को जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत पर्दे डालते हैं और कभी उनको नहीं सोचते, हमेशा ये कहते हैं हमें पता है हमारी औलाद का, हमें अपनी औलाद पे ट्रस्ट है, हम अपनी औलाद को तो सही समझते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें, एक नबी की औलाद भी अगर ऐसा काम कर सकती है जो आगे भी आएगा, तो बाकियों का क्या कहना। और अगर आपको पता चल जाता है कि किसी के अंदर कोई ऐसे जज्बात आ रहे हैं, तो उसको भी समझाना चाहिए और दूसरे को भी वॉर्न कर देना चाहिए ताकि फितने फसाद में ना पड़े। अच्छा अब एक और बात बड़ी अहम है कि वो आके अपने बाप को बता रहे हैं, तो बाप हसद करता कि देखो इसने तो सूरज को सजदा करते हुए देख लिया, क्या मैं इसको सजदा करूंगा, अब ये क्या मेरे से भी आगे चला जाएगा। नहीं, क्यों, उनको क्यों नहीं हसद हुआ, इसलिए कि वालिदैन दुनिया की वो वाहिद हस्तियां होते हैं जो अपनी औलाद को आगे बढ़ता हुआ देख के हमेशा खुश होते हैं, कभी उदास नहीं होते, कभी गमजदा नहीं होते। बेटे की कामयाबी पे बेटा बाप से भी 10 हाथ आगे चला जाए ना, तो बाप उस पे खुश होता है और फखर करता है कि ये मेरा बच्चा है, और कभी वो ये नहीं चाहता कि ये मेरा बच्चा पीछे हो जाए। अब बाकी कोई भी हसद कर सकता है, लेकिन वालदेन कभी नहीं करते, इसे ये भी पता चलता है हमें। अब अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे अब आप देखेंगे, बाज़ तफसीरों में लिखा हुआ है कि नहीं उनको पता चल गया था ख्वाब का, हालांकि अगर आप देखें आगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब नहीं बताते, क्योंकि बाप ने मना कर दिया, अगर बता देते तो पता नहीं क्या होता। वो कदालिक यजतबी का रब्बू का, और ये अब वहां तक याकूब अलैहिस्सलाम की बात खत्म हो गई है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह यजतबी का रब्बू का, इसी तरह चुन लेगा तुझको तेरा रब, तेरा रब तुझे चुन लेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यानी इस ख्वाब की जैसे इस ख्वाब की तरह, या ख्वाब जैसे इस ख्वाब में आया, इस तरह से अल्लाह ताला आपको चुन लेगा कि आपके सामने इस तरह वो वाकई आपके सामने झुक जाएंगे, या इस ख्वाब को दूसरों को ना बताने के जरिए अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। बास कहते हैं कि ये याकूब अलैहिस्सलाम की ही बात है कि जो उन्होंने अपने बेटे से कही, लेकिन ज्यादा ये भी लिखा गया कि ये अल्लाह ताला ही का कलाम है। वह युअल्लिमुका मिन तावील अहदीस, और अल्लाह ताला तुझे सिखाएगा बातों की तह तक पहुंचना, यानी ख्वाबों की ताबीर बयान करना अल्लाह ताला आपको सिखाएगा। तावील का मतलब क्या होता है कि कोई बात सुन के उसकी जो असल असल बात होती है पीछे उस तक पहुंच जाना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी तो छोटे हैं, तो उनको अभी तावीन नहीं आती थी, ख्वाब की ताबीर करना। लेकिन जब वो बड़े हुए तो ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया। और यहाँ से पता चलता है कि ये इल्म अल्लाह ही देता है, यू अल्लीमु का, वो सिखाएगा तुझको। और आप देखेंगे कि वो जेल में कैदियों की ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं, बादशाह के ख्वाब की ताबीर कर रहे हैं, और बिल्कुल सही वैसे ही निकली। वयुतिम्मु नियामतहु अलैका, और वो तुझ पर अपनी नेमत को तमाम कर देगा। नेमत को तमाम करना, कौन सी नेमत अल्लाह ताला ने तमाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम पे? सबसे बड़ी नेमत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली वो तो नबुवत थी, नबी बनाया उनको। और अल्लाह ताला ने उनको करीम बनाया, जैसे मैंने आपको बताया नसब में कि उनका नसब कितना आला था, कि उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, कहाँ तक जा रही है ये बात। तो उनको इस तरह से भी, और फिर उनको उनके भाइयों के ऊपर चुन लिया अल्लाह ताला ने, और इनके भाइयों को इनके आगे अल्लाह ताला ने यानी झुका दिया, जो कि इनके अपर हैंड होने की अलामत के, इनके दर्जे उनसे ऊपर कर दिए और भाइयों को इनसे नीचे रखा। फिर अल्लाह ताला ने इनको जो हुसन भी दिया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का आधा हुसन इनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और फिर जन्नत में भी ये दाखिल होंगे कयामत में, तो ये भी नेमत की फिर तकमील हो गई, मुकम्मल हो गई। वह आला आले याकूब, और आले याकूब पे भी अल्लाह ताला अपनी नेमत को तमाम करेगा। और आले याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, आप देखिए कि उनकी औलाद के अंदर अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर पैदा किए। जो असबात आता है सूरह बकरा में, असबात का जिक्र पढ़ते हैं, तो वो असबात अलिफ सीन बा और तो अलिफ तो वो ये ही इनकी आगे आल थी, ठीक है। तो उनमें भी अल्लाह ने नबुवत रखी, और कई कई नबी आए, एक एक वक्त में कई नबी होते थे। कमा अतम्मा, ऐसे ही अल्लाह ताला पूरी करेगा नेमत को, जैसे आला अबवई का, जैसे तुम्हारे दो बापों के ऊपर अल्लाह ताला ने पूरी की। कौन से दो बाप? मिन कबलू, जो इससे पहले थे, कौन? इब्राहिम और इसहाक अलैह सलाम, जो आपके बाप थे, जैसे उनको अल्लाह ताला ने नबुवत अता फरमाई और इब्राहिम अलैह सलाम को जद्दुल अंबिया बनाया, उनकी नस्लों के अंदर आगे नबी पैदा किए, उसके बाद कोई नबी उनसे बाहर नहीं आया, उनकी नस्ल में ही आया। तो इस तरह अल्लाह ताला आपके ऊपर और आले याकूब के भी अपनी नेमतों को तमाम कर देगा। इन्ना रब्बक अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला और हिकमत वाला है, हकम से भी है, जज है, यानी वो हर चीज का जानने वाला है। जो भी वो कर रहा है उसको पता है कि वो ये क्या है जो वो कर रहा है और इसमें क्या हिकमतें हैं, चाहे वो हिकमतें हमें मालूम हो या ना हो, उसको पता है। माजी का भी, मुस्तकबिल का भी, हाल का भी, सब उसके सामने चीजें जाहिर हैं। और ये दो नाम अल्लाह ताला के ऐसे हैं कि इन पर गौर करने से इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है, उसको तसल्ली हो जाती है कि वो सब कुछ तो जानता है, जो वो किए कर रहा है उसका भी उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे ही है, हैजर्ड नहीं कुछ हो रहा कि बस खुद ही कुछ होता जा रहा है, वो वहां चला गया तो ये हो गया, इधर से आ गया तो वो हो गया, खुद नहीं हो रहा, अल्लाह ताला करने वाला है, और हिकमतों पे मबनी है उसके हर फैसला। तो ख्वाह कितनी ही फिर नेगेटिव बात क्यों ना हो, इंसान को तसल्ली हो जाती है कि मुझे, मेरे लिए जो फैसले करने वाला है वो तो अलीम और हकीम जात है। फिर चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी हालात हो, इंसान डिप्रेस नहीं होगा, वो अलीम और हकीम जात मेरे ऊपर है। लकद कैन फी यूसुफा व इखवती ही आयातुन लिस्साइलीन, बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। मैंने इस किस्से में जो यूसुफ और उनके भाइयों का था, इसके अंदर बड़े ही लेसन है उनके लिए जो सवाल करें, जो जानना चाहें उनके लिए बहुत लेसन है, बहुत सबक आमोज बातें हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई है इसमें, क्या चीजों के पीछे खैर के पीछे शर और शर के पीछे खैर, ये दिखाई है अल्लाह ताला ने। दिन एक जैसे नहीं रहते, दिन भी कभी आज ऊपर है कल नीचे है, कल नीचे है आज ऊपर है, इस तरह दिन बदलते रहते हैं इंसानों के ऊपर। और अल्लाह ताला पर तवक्कुल, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा और उम्मीद, अल्लाह ताला ने ऐसी इसमें दिखाई है कि उम्मीद कभी ना छोड़ना। उम्मीद के ऊपर वो कहते हैं ना दुनिया चल रही है, तो वाकई उम्मीद इंसान के लिए इतनी बड़ी तसल्ली की चीज है। और जिसने मायूसी की तो मायूसी को कुफर कहा गया, क्योंकि मायूस इंसान ये बताता है कि अल्लाह ताला मेरे हालात नहीं बदल सकता, मेरा कुछ अब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कादिर है इस बात पे कि उसके हालात को बदल दे, उसके गमगीन दिल को खुश कर दे, उसके मसाइल को दूर कर दे, उसकी मुश्किलों को उस पे आसान कर दे। आप देख लें यहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने अंधे कुएं में डाल दिया और अल्लाह ताला ने कहां पहुंचा दिया। तो बहुत सारी निशानियां, बहुत सारी बातें इसमें सीखने की हैं, समझने की हैं, और रवैये और लोगों की तरफ से तकलीफ, लोगों की तरफ से ऐसे रिश्तों का मुंह मोड़ जाना और बेरुखी इख्तियार कर लेना और प्यारे रिश्तों का दुश्मन बन जाना, सब चीज इसमें पता चलती है। कैसे दुनिया के लोग मतलबी हो जाते हैं, कैसे दुनिया के लोग आज कुछ हैं और कल कुछ हैं, कैसे गलतियां करके फिर इंसान पछताता है, कैसे कभी कभी इंसान के लिए कोई नेमतें भी उसकी आजमाइश बन जाती हैं, ये कभी किसी की मोहब्बत उसके लिए आजमाइश बन गई, कभी अपने आप को मिला हुआ हुसन अपने लिए आजमाइश बन गया। चीजें तो ये बड़ी नेमत की हैं जिनको कोई इंसान सोचता है काश मुझे भी इतनी मोहब्बत मिले, काश मुझे ऐसा हुसन मिल जाए, मगर बाज दफा नेमतें भी इंसान के लिए इम्तिहान होती हैं। वो कितने इम्तिहान अपने साथ खींच लाती हैं, इंसान सोचता भी नहीं। वो कुछ आता है ना, उसको ये मिला हुआ मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तुम्हें क्या पता, तुम्हें मिल जाए तो कितनी आजमाइशों में तुम पड़ जाओ। ये मोहब्बत ही थी जो जिसने दुश्मन पैदा कर दिए, फिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दुनिया लाख बुरा चाहे लेकिन होता वो ही है जो अल्लाह चाहे। दुनिया आपका कितना भी कुछ बिगाड़ना चाहे नहीं बिगाड़ सकती। तो इसमें फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह की मदद, सब्र, हिम्मत, ऑप्टिमिस्टिक रहना, मायूसी के कुएं के अंदर नहीं चले जाना, सब चीजें पता चलती हैं। बहुत जबरदस्त वाकई आसनुल कसस में से है। फिर एक ही मां बाप की औलाद कोई कैसी निकलती, कोई कैसी निकलती। माँ बाप ने तो फर्क नहीं किया होता तरबियत करने में, लेकिन कोई कुछ निकलते हैं, कोई कुछ निकलते हैं। अल्लाह हू अकबर, क्या क्या बताऊं, कितने इसमें तो लेसन्स है ना, कि अब आप देखें ना कि ये हम सब की जिंदगियों से कितने करीब है बातें, कितनी रेलिवेंट है ये बातें हम सब की जिंदगी से। तो फिर क्यों ना सीखें हम ऐसी सूरह को, और क्यों ना समझें इसको, और क्यों ना अल्लाह ताला जो तसल्ली देता है उससे तसल्ली ले। अच्छा, अब क्या हुआ, भाइयों की एक मीटिंग हो रही है, छुप के एक मीटिंग हो रही है। भाई जो हैं वो 10 भाई, बिन्यामीन तो अभी छोटे ही थे ना, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ही छोटे थे, तो वो नहीं जो बड़े भाई हैं। इद कालू, जब उन्होंने कहा ला यूसुफ व अखूहू, बेशक यूसुफ और इसका भाई, कौन सा भाई, बेबी ब्रदर बिन्यामी, अहब्बू इला अबीना, हमारे बाप को ज्यादा महबूब है, मिन्ना हमसे, हमारी निस्बत, वनाहनु उस्बा, जबकि हम इतने ज्यादा हैं, हम इतने पावरफुल हैं, यानी बड़े अच्छे जवान, गबरू जवान थे, स्ट्रांग थे, काम काज भी करते थे। मतलब ये अब एज तो नहीं पता, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम पता चलता है कि एल्डरली थे, इनके बेटे ही ये सब संभालते थे। तो ये हम सारों को, इतने जो इतने काम वाले बेटे हैं, इतने काम काज वाले बेटों को छोड़ के इनको वो पसंद आता है जो छोटा सा बच्चा है। अब कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो झुकाव था ना, याकूब अलैहिस्सलाम का जो झुकाव था या यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, इसमें कुछ वजूहात थी। देखिए, बाज औलाद ना खुद ही मोहब्बत लेती है, उनकी खिदमत गुजारी की वजह से, उनकी केयर की वजह से, उनके पूछने की वजह से वालदैन को, वालदैन उनसे खुद बहुत मोहब्बत, यानी उनकी कोई ऐसी, उनकी कुछ सिफात होती हैं, कोई ऐसी खूबियां उनके अंदर होती हैं जिसे वाकई दिल करता है इसको प्यार करें। तो वो बड़े फरमा बरदार भी थे, खूबसूरत भी बहुत थे और आउटस्टैंडिंग थे, तो बाप को प्यारे लगते थे। अब भाइयों के अंदर इतनी वो चीज नहीं थी, इसीलिए तो आगे देखे ना, अब इनकी बात जरा देखें, इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, हमारा बाप जो है ना वो तो बड़ी भूल में, गुमराही नहीं कह रहे वो, दलाल का मतलब यहाँ पे ये नहीं हमारा भाई बाप गुमराह है, अगर गुमराह कह देंगे तो एक नबी को गुमराह कह रहे हैं तो ये तो वो काफिर हो जाएंगे, ये तो मुसलमान है, ये भाई काफिर नहीं है, मुसलमान है। तो ये लेकिन इससे पता चलता है कि ये अपने बाप के लिए किस तरह के ख्यालात रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, और जो नेगेटिव सोच किसी के बारे में होती है ना, वो फिर आपके किरदार, आपके अखलाक में झलक ही जाती है, कहीं ना कहीं आ जाती है बातों में। जब अंदर में किसी के लिए अच्छी फीलिंग ना हो, तो अब वो जो बाप के लिए ऐसे कि ये इतने फरमाबरदार नहीं थे, इस तरह से वो अखलाक की खूबियां नहीं थी इनके अंदर जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर थी। तो एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह ये कि देखें जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको अक्सर ये फील होता है कि ये सारा प्यार हमारे छोटे ही ले जाते, छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं हम, हर घर का यही नहीं मसला होता। हालांकि जब वो बड़ा भी छोटा था तो उसको भी प्यार किया गया था, लेकिन उसको अपना प्यार तो याद होता नहीं, उसको ये होता है इसको बड़ा प्यार मिल रहा है। और ये भी एक रीजन है, और वैसे भी जैसे आपको बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा की वफात हो गई थी, तो इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा प्यार करते थे। तो जो इज्जत और एहतराम के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम पेश आते थे वो मिसाली था। तो अब यहाँ पे अच्छा एक बात आप नोट करें, जो घरों में बच्चे होते हैं ना, हालांकि छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका कोई बेबी उनके घर में और आ जाए, छोटा बच्चा पैदा हो जाए, छोटा बहन भाई आ जाए दुनिया में, तो छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के भी होते हैं तो वो उनको मारने की कोशिश करते हैं और उनसे जेलस होने लगते हैं कि इसको क्यों पकड़ा हुआ माँ ने, है ना, तो ये जेलसी आ जाती है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि वो बराबरी नहीं करते थे बच्चों के अंदर, बराबरी करते थे, इन्होंने बच्चों ने देखें ये नहीं कहा कि हमारा बाप उसको ज्यादा देता है, अक्सर तो ये हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होते हैं ना कि इसको ज्यादा दे दिया, इसके नाम ये लगा दिया, इसको सारा कुछ तो इसको ही दे दिया, हमें तो कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में कह रहे हैं, और एक वजह ये भी है कि मोहब्बत के ऊपर इंसान का जोर नहीं होता। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, अब इस पे इंसान का जोर नहीं होता, तो फरमाते थे मैं सारी बीवियों में इंसाफ करता हूँ, अल्लाह दिल के ऊपर नहीं है काबू के, इंसान अपना दिल किसी के लिए मोहब्बत डाल दे वो नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला ही मोहब्बतों का मालिक है जिसके लिए दिल में मोहब्बत डाल दे। तो ये आपको बहुत सारी रीजंस पता चले ना, वरना ऐसा नहीं कि अंबिया तो सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले हैं, ये थोड़ी कि उन्होंने को उनको ज्यादा चीजें देते थे और इनको नहीं देते थे, ऐसे नहीं था। और हमारी शरीयत में भी औलाद में बराबरी करने का हुक्म दिया गया, बल्कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो जाए, उसने कहा मेरे साथ गवाह बने, मैं अपने एक बच्चे को कुछ देना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों को भी दे रहे हो, उसने कहा नहीं दूसरों को तो नहीं दे रहा, आपने फरमाया मैं जुल्म में गवाह नहीं बनूंगा, यानी अगर देना है तो सबको दो, तो फरमाया अल्लाह से डरो और अपने बच्चों में बराबरी करो, ठीक है, एक को देना दूसरे को ना देना, फिर उससे आगे फिर खराबियां पैदा होती हैं। तो यहां पे सिर्फ प्यार की बात हो रही है। आगे उन्होंने क्या डिसाइड किया, अच्छा आप देखें, ये वो छुपके अब एक साजिश कर रहे हैं, एक प्लॉट बना रहे हैं। उकतुलू यूसुफा, कत्ल कर दो यूसुफ को, इसको रास्ते से ही हटाओ, इसका पत्ता ही साफ करो। अव्यतराहू, या फेंक दो इसको अर्दन किसी जमीन में, यखलू लकुम वजहु अबीकुम, खाली हो जाएगा तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का चेहरा, यानी अब बाप के आगे ना यूसुफ होगा तो फिर तो हम ही होंगे ना, तो खाली हो जाएगा तुम्हारे बाप का चेहरा, यानी कि अब वो हमारी तरफ सारी अटेंशन देगा, हमें हमें अटेंशन पे करेगा, फिर यूसुफ तो होगा ही, तो हमारा तो काम बन गया फिर। तो उन्होंने एक ईवल रास्ते को चुना, एक बुरे रास्ते को चुना, बाप की मोहब्बत लेने के लिए। हालांकि देखें, जो इंटेंशन थी, जो मोटिव था ना, वो बुरा नहीं था, बाप की मोहब्बत लेना। हर एक बच्चे के लिए कोई इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि मैं माँ बाप का प्यारा बनूं, लेकिन उसके लिए बजाय इसके कि अपने किरदार, अपने अखलाक को संवारे और वो चीजें करें जो बाप को पसंद है, वो उल्टा उन्होंने क्या किया, इसको ही हटाओ तब तो हमारा काम बनेगा। तो उनकी हसद ने उनको कहां तक पहुंचा दिया। और इससे पता चलता है कि अगर आपका मोटिव अच्छा भी है, तब भी हसद की आग लग जाए ना, तो इंसान तबाह हो जाता है, कहीं का नहीं रहता। अब देखें, ये मोटिव अच्छा ही होता है ना, कभी सास है, बहू है, एक दूसरे के ऊपर जादू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि इसको रास्ते से हटा दो, ताकि सास कहती है मेरा बेटा, या बहू कहती है कि मेरा शौहर, उसके मैं नजर का तारा बन जाऊं और इसकी तरफ कोई तवज्जो ना हो, इसके ना पूछे वो, तो ये कांटा ही रास्ते से हटा, इसीलिए होते हैं ना। अब मोटिव तो अच्छी बात है, कोई बीवी चाह रही है कि मैं अपने शौहर की आंख का तारा बनूं, तो अच्छे है ऐसे, लेकिन उसके लिए वो बजाय इसके कि वो गुण पैदा करे, वो उल्टा दूसरे को हटाने के चक्कर में पड़ गए। तो असल मकसद चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर हसद आ गया ना, तो फिर इंसान बुराई के अंदर पड़ता है, और पाक चीज भी नापाक हो जाती है, वो पाक जज्बा है मोहब्बत पाने का, वो भी नापाक हो गया। और जरूरी नहीं है कि कोई जायदादों के या माल के या इस वजह से किसी से हसद करता हो, पता चला कि अटेंशन पाने के लिए और मोहब्बतों के लिए भी हसद होते हैं। और अब आप देखें, यहाँ पे नहीं आपको ऐसे लग रहा जैसे अल्लाह ताला हमें, इसीलिए किस्सा कहा गया ना, अल्लाह ताला हमें ले गया है उस गैदरिंग में जिसमें अब ये भाई बैठे हुए और सीक्रेटली प्लॉट कर रहे हैं, और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये डायलॉग उक्तलू यूसुफ, और ये कोई सुन रहा है, वो तो यही समझ रहे थे ना हम छुप के प्लॉटिंग कर रहे हैं। मगर ये वो भूल गए कि एक समी और बसीर जात है, एक अलीम और खबीर जात है, जिसकी नजरों से हम कभी नहीं छुप सकते। कोई कैमरा वहां पे नहीं लगा हुआ था, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं था वहां पे, कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा रिकॉर्ड किया कि कयामत तक के लोग इस बात को पढ़ते रहेंगे, और जो उन्होंने प्लान बनाया उसको सबसे छुपा रहे थे, मगर अल्लाह से कैसे छुपाओगे। ये है अल्लाह ताला की निगरानी, ये है उसकी खबरगीरी। हम भी जब कुछ ऐसी ईवल बातें करते हैं, उस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं कि जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं वो तो नहीं सुन रहा ना, ठीक है वो नहीं सुन रहा, लेकिन कोई तो और सुन रहा है, वो कौन सुन रहा है, इसका आपने कभी सोचा ही नहीं होता। जिसको आप भूल गए होते हैं वो अलीम और खबीर साथ। अल्लाहु अकबर। वतकूनू मिन बादी कौमन सालिहीन, और तुम हो जाना इसके बाद नेक, बन जाना नेक लोगों में शामिल हो जाना इसके बाद, तो कोई बात नहीं। असल में ना, जब इंसान कुछ ईवल करता है ना, याद रखें, ईवल से अंदर एक जिसका जमीर जागा हो, जिसका हर एक नहीं, जिसका जमीर अभी है, वो उसको ना कचोके लगाता है कि ये क्यों कर रहा है, क्यों ये नहीं करना चाहिए, वैसे ये गलत बात है, तो फिर हम इंसान को शैतान कैसे तसल्लियां देता है कि कोई बात नहीं, आज कर लो कल नेक बन जाना। जैसे यहाँ पे एक भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, आज तो हम कर रहे हैं ना, या हमने थोड़ी हमेशा ऐसे करते रहना, उसके बाद बस हम तौबा कर लेंगे। हम भी कहते हैं कि बस हज कर लूं, इसके बाद मैं उम्रे पे चली जाऊंगी, उसके बाद मैं हज कर लूंगी, उसके बाद मैं तौबा कर लूंगी, उसके बाद मैं इतनी नफल पढ़ लूंगी, उसके बाद सदका कर लूंगी, तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, वो मुझे माफ कर देगा। अभी तो मजा कर लूं, अभी तो ये गुनाह कर लूं, तो हजारों साल पहले इख्वाने यूसुफ को भी ये ही धोखा दिया था शैतान ने, और आज भी वो यही बहाने सिखाता है। और इंसान इस तरह से करके अपने जमीर को थपकी दे देता है और सुला देता है, बस अपनी जवानी जी लूं, उसके बाद मैंने नेक हो जाना, बस मुझे जॉब मिल जाए, और मेरे बच्चे जरा इनकी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं, बस शादी हो जाए मेरी, फिर सब चीजें ये सारे गलत काम मैंने छोड़ के बड़ी नेक बन जाना। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 10 में अल्लाह तआला ने फरमाया, और खर्च करो उसमें से जो अल्लाह तआला ने तुम्हें रिस्क दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आ जाए तो फिर वो कहे रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह तूने इसको एक डिले, एक अजले करीब तक, कुछ टाइम तक इसको डिले क्यों नहीं कर दिया मेरी मौत को, कि मैं तस्दीक कर लेता और मैं सालेहीन में से हो जाता। शैतान हर गलत काम इसी तरह कराता है कि ये बहलावा दे देता है कि मैं नेक तो बन जाऊंगी ना। इस मरने वाले ने भी सारी जिंदगी यही सोचा था ना कि मैं नेक बन जाऊंगा, हत्ता कि मौत का फरिश्ता सर पे आगे खड़ा हो गया, वो यही प्लान करता रहता है, हाँ कर लूंगा मैंने कब कहा मैंने नहीं करना, मैंने कब कहा मैं तोबा नहीं करूंगी, अब जब जाने का टाइम आ गया तो अब याद आ गया कि भाई ये मैंने क्या किया, मैंने तो नेक बनना था अभी। तो ये जो कल 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 होता है ना, और जो ये बहकावे होते हैं शैतान के, ये समझ जाना चाहिए कि ये जो मैं बन जाऊंगी नेक ना, ये धोखा है। कितने ही नौजवान हैं, यकीन करें कब्रिस्तानों में देखें कितने ही नौजवान हैं मट्टी तले दबे में, यंग यंग, कोई 20, कोई 22, कोई 30 40, इस एज के लोग हैं, और वो भी सोचते थे रोजाना कि अच्छा हम नेक बन जाएंगे, अच्छा हम नमाजी बन जाएंगे, अच्छा हम ये कर लेंगे, तो वो ये सोचते सोचते ही दुनिया से चले भी गए और ये नौबत ना आई। तो कभी ये ना सोच के कोई गुनाह करें कि अच्छा नेक बन जाऊंगी। अल्लाह हू अकबर। और फिर इंसान जो ये सोचता है ना कि अभी कर लूं मैं, ये एक ही तो गुनाह है, कोई बात नहीं बस इतना सही तो कर रही हूं, याद रखें एक गुनाह के आगे कितने ही गुनाहों के दरवाजे खुल जाते हैं, वो एक नहीं रहता, वो कई जगह आगे आप देखिएगा। यहाँ पे भी उन्होंने तो सोचा ना सिर्फ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दें हम तो बस फिर हमारा बाप के हम लाडले बन जाएंगे, अब उस जो यूसुफ को प्यार मिलता था यूसुफ नहीं होगा तो उसका वाला प्यार हमें मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो उनके साथ किया रवैया, इन्होंने कतई रहमी भी की, इन्होंने एक बच्चे पे जुल्म भी किया, इन्होंने अपने बूढ़े बाप को भी इतना सता दिया, इतना सता दिया, इतना गमगीन कर दिया कि वो रो रो के अंधे हो गए थे, और अपने बाप के साथ भी इन्होंने एक जुल्म किया, बच्चे के साथ तो किया अपने बाप के साथ भी किया। और कभी कभी ईवल में से, कभी शर में से खैर नहीं निकलती, ये इंसान की भूल है कि वो आज मैं शर कर लूं इसमें से कोई खैर निकल आएगी, नहीं, आज मैं गुनाह कर लूं इसके अंदर से अच्छा नतीजा निकल आएगा, आज मैं बुराई कर लूं तो कल को बरकतें आएंगी, बरकत नहीं आनी, आप जिधर गुनाह करेंगे, आप शादियों पे करें, आप मेहंदियों पे करें, आप अपनी कमाइयों में करें, आप कहीं पे भी, आप बाजारों में करें, आप किसी जगह पे मामलात में कर ले, आप देखेंगे जहां आपने अल्लाह की नाफरमानी की है ना, वहां से कभी भी खैर निकलनी नहीं है, वो बरकत उठ जाएगी। तो इन्होंने धोखा भी दिया अपने बाप को, देख लें कि ये कैसे इन्होंने धोखा दिया।